Harpa Regia chiude l'interviolo.
हमारे साथ है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की बेटी नेहा गुप्ता जो कि स्थायी लोक अदालत की सदस्य हैं और भी बहुत कुछ है। चलिए महिला दिवस के अवसर पर मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनके बारे में विस्तार के साथ। तो नेहा जी नमस्कार, स्वागत आपका हर परिचयों पर।
सभी नमस्कार।
तो नेहा जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमको और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता राजनांदगांव से हूँ। मेरा जन्म राजनांदगांव में हुआ था। मैं अपने माता पिता की तीसरी संतान हूँ। एट प्रेजेंट स्थायी लोक अदालत में सदस्य हूँ। लोक अदालत में आने के बाद काफी ज्यादा मुझे लगा, जैसे आप जानते होंगे सोशल वर्कर जो रहते हैं उनके अंदर एक समाज के लिए, कल्याण के लिए काफी सारा सोशल काम चलता रहता है कि हम समाज के लिए ये करें, हम समाज के लिए वो करें। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, जुडिशरी का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है कि कानून में रहते हुए आप लोगों के हित के लिए काम करें। मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरी प्रोफाइल देखी गई। प्रोफाइल में काफी सारा सोशल वर्क था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं काफी सारे इंटरनेशनल एनजीओ से और नेशनल एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैंने 30,000 नेशनल प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया कोविड टाइम पे। 500 टीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि काफी सारे न्यूज चैनल पे मेरी न्यूजेस चली हैं। और मैं नक्सली बच्चों के लिए काम करती हूँ। ब्लड कैंप लगवाया है मैंने। बहुत सारे मतलब जो भी लेडीज आती हैं उनकी काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, पुलिस लाइन राजनांदगांव 8वीं बटालियन में काफी मोटिवेट प्रोग्राम हम लोग ने कैंप किया है, काउंसलिंग किया है मैंने काफी सारे लोगों की। तो ये जो सोशल बैकग्राउंड था ये पापा की और दादाजी की देन है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पन्नालाल जी गुप्ता है, वो नहीं रहे लेकिन वो आज भी हमारे अंदर है। जब हम समाज सेवा करते हैं तो वो हमारे अंदर अभी भी जिंदा है कह सकते हैं। वो फ्रीडम फाइटर भी थे और वो हमेशा आप 12 महीना वो खादी के ही कपड़े पहने रहते थे। अच्छा। तो उनका बचपन से हमने देखा है। और पापा भी और मेरी मम्मी संरक्षिका है अग्रहरी समाज की। मेरी दोनों सिस्टर्स हैं वो भी अपने अपने स्तर पे समाज सेविका ही है। तो ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है समाज सेवा कर रहा है। और चूंकि लोक अदालत का जब निकला तो मैंने सोचा कि लोक अदालत क्या है, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी उसको। जब पढ़ी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जन उपयोगी कर दिया है उसको। इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, पब्लिक भी जानती कि पेशी पे पेशी मिलती जाती है लोगों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लोक अदालत स्थापित कर दिया हर स्टेट में और उसको जिले में डिवाइड कर दिया है। जैसे अब हम बैठे हैं संभाग में, दो संभाग में मैं हूँ, मेरे अंदर 6 जिले हैं। तो इसमें क्या होता है कि जन उपयोगी कर दिया है, मतलब जन जो भी उपयोग करे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं हम सड़क यूज करते हैं, हम जल मार्ग यूज करते हैं, हम कभी रोड यूज करते हैं, रोड से जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितनी भी है उस सेवा में अगर वंचित हो रहा है इंसान तो वो स्थायी लोक अदालत में आ सकता है। और इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती। जैसे अगर आप कोई भी कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या कोई भी केस लगाते हैं तो आपको कोर्ट फीस लगती है, बट स्थायी लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ती। वकील आप खुद बन सकते हो और अपना पक्ष जजेस के सामने और सदस्यों के सामने रख सकते हैं। हम न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी हैं तो आप हमारे सामने रख सकते हैं। जैसे डाक घर में कोई सेवा की कमी आ रही हो, ट्रांसपोर्ट में कोई सेवा की कमी आ रही हो, आप उससे वंचित हो रहे हैं सेवा से, विद्युत से, मतलब बिजली से, पानी से, सैनिटेशन से, और कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप एजुकेशन और शिक्षा विभाग हो, चाहे हाउसिंग और रियल एस्टेट हो, ये सारे डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट पूरे लोक अदालत को दे दिया गया है। लोक अदालत में जो फैसला हम लेते हैं, अवार्ड पारित होते हैं, जो फैसला हम लेते हैं उसकी अपील नहीं होती है आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट अपील नहीं होती, दोनों पक्ष उसमें बाध्य होता है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ, मध्यस्थता कर सकती हूँ। काउंसलिंग का एक पार्टी है, काउंसलिंग करके आपको मध्यस्थता करके दोनों पक्ष को राजी करना पड़ता है, फिर राजीनामा होता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें आप सजा वजह कुछ नहीं दे सकते हो, आप किसी के मन को ठेस बिना पहुंचाया किसी को सजा नहीं दे सकते हो, मध्यस्थता कर सकते हो, उनकी बात उन तक ला सकते हो, इंसान अपना पक्ष रख सकता है, तारीख पे तारीख नहीं मिलती, आखिरी 90 दिन के अंदर हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं केस को, हमको है कि 90 दिन के अंदर आपको 45 दिन या 90 दिन तक आपको एक केस को सॉल्व कर देना है, इसको पेंडिंग नहीं रखना है। जैसे 8 साल 9 साल तक जो विवाद केसेस होते हैं वो सारे केसेस में नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, वकील की फीस नहीं है, 10 रुपए का एफिडेविट लगता है, 10 रुपए की नोटरी लगती है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा बिना वाद विवाद वाला कोर्ट है लोक अदालत, जो जन के लोग के लिए ये बनाया गया, उनकी सेवाओं से वो वंचित ना रहे, इसके लिए लोक अदालत का स्थापना हुई है।
नेहा जी, बहुत अच्छे से आपने शॉर्ट में लोक अदालत के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से अल्पा रेडियो में आपसे जरूर आगे भी बात करेंगे। आज तो हम विमेंस डे पर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में आपने इतनी जानकारी बताई, जैसे आपने कहा कि शुरू में पढ़ा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो वैसे आप बता रही थी तो मुझे कुछ कुछ जानकारी थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, ढेर सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन अभी हम उधर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो जो आज का पर्पज है, आज का जो मोटो है आपसे बातचीत करने का, वो भटक जाएगा। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, आपने अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाया था, पीएचडी वाली डॉक्टर है या एमबीबीएस वाली डॉक्टर है, या फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, कौन सी वाली डॉक्टर है?
मानव सेवा में मैंने डॉक्टरेट किया है, हमारे डॉक्टरेट किया है इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी से, इसके लिए जो हमारे सोशल वर्क हमने किया है उसका पूरा जमा करना होता है, तो ये मैंने मानव सेवा में डॉक्टरेट की है, इसलिए डॉक्टरेट लिखती हूँ मैं।
ओके ओके, मतलब अपनी सारी अपने सोशल सेवा की है कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है?
जी जी,
चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ये मतलब बिल्कुल नई चीजें हैं जो आम आदमियों को नहीं पता है, लोग समाज सेवा वैसे भी करते हैं छोटा मोटा, मतलब अपने आसपास के लोगों में करते हैं, लेकिन आपने उसको बहुत बृहद रूप दिया है। जैसा आपने बताया कि आपका पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ है
जी,
लेकिन सारे परिवार का रुझान इस तरफ होना, क्या कोई मतलब फैमिली से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई स्ट्रगल या कुछ रहा है जिसके कारण आप लोग सब इस तरफ मुड़े हैं?
नहीं, देखिए स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में रहता है, आज हर कोई अपनी अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। मेरी जो मेरा रुझान था वो पापा मम्मी को देख के तो आया ही था, बट जब मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है बोल सकते हैं, उसने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया और इस तरफ ज्यादा मोड़ दिया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट लव मैरिज हुई थी, ये जो भी हुआ 7 इयर्स हम दोनों साथ रहे, हमारा हस्बैंड और हम, फिर म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, तो ये यहाँ से मानसिकता चेंज होने लगी है लोगों की कि भाई अगर लड़कियों का डिवोर्स हो गया है या लड़कियां सिंगल हैं तो उनको लोग बहुत ही बुरी नजर से और समाज एक अलग टाइप का वो उनको जगह दे देता है, ये चीज बहुत ही गलत है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज है दिमाग में, ऐसा क्यों, जब क्यों क्वेश्चन आया तो फिर मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया, ऐसी महिलाओं से मिली कि ऐसा लग रहा था मेरे साथ ही सबसे बुरा हुआ, जब अपने से मतलब और भी जो लेडी है जिनके साथ बहुत बुरा हुआ उनको देखे तो लगा यार मेरे साथ उतना बुरा नहीं हुआ, मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा हैं और काफी लोग हैं, मैंने सुसाइड भी कमिट किया था, लेकिन जब हाँ सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि लव मैरिज थी और लव मैरिज के बाद ऐसा हुआ था कि मम्मी पापा ये सब चीज देखे उससे पहले, मैं उनको छोड़ के आई और मेरा घर भी नहीं समझ रहा है, तो मतलब बहुत उथल पुथल थी, तो मैंने सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड करके उठी तब समझ में आया नहीं जिंदगी भगवान ने दोबारा दी है तो कुछ तो अच्छा काम करने के लिए दिया होगा भगवान ने, मुझे मौत नहीं आई तो कुछ तो करना है मुझे लाइफ में।
मैं सोचती हूँ कि आप अपनी शादी नहीं बचा पाई लेकिन लोक अदालत के माध्यम से आपने बहुतों की शादियाँ बचाई होंगी।
जी काउंसलिंग करती आई हूँ बहुत, मैं काउंसलिंग मोटिवेशन मैं को रिकॉर्ड होल्डर दिया है, मैं काफी कोविड टाइम पे मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं, मैंने सेमिनार्स दिए हैं और ऑनलाइन काफी लोगों को मोटिवेट किया, जिसके कारण मेरे पास 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अलग अलग एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और अभी और भी आने को है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती हूँ मैं, तो ये जो आई उथल पुथल लाइफ में उसके बाद एक ठहराव आया, फिर ठहराव के बाद ऐसा था मम्मी पापा को लगने लगा, समाज वालों ने काफी प्रेशर दिया
कि नहीं अब दूसरी शादी भी इंसान की होती है, आजकल ट्रेंड है कि चलो भाई लड़की अकेले है तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन हर कोई बच्चे अडॉप्ट नहीं करता है। तो जब हमारी दूसरी शादी की बात हुई तो चलिए ठीक है, फिर लोगों ने कहा चलो दूसरी शादी हो रही, तो लोग ने फर्स्ट शादी को भूल गया, ऐसा होता है ना लोगों के मन में इतना जल्दी चेंज होने की। तो मेरी सेकेंड शादी हुई उसके बाद ये चीज मतलब समझ नहीं आई कि सामने वाले कोरबा के थे और उन्होंने बोला था बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन शादी होने के बाद वो बच्चे को अडॉप्ट किए नहीं। पहला वो थोड़ा सा माइंड में था कि यार बच्चे को अडॉप्ट नहीं किए, और वो 6 महीने रही, उन्हें काफी ज्यादा मेरे पूरी ज्वेलरी उन्होंने सेल आउट कर दिया। हाँ सेल आउट कर दिया, मेरे पूरे सर्टिफिकेट रखे हैं, अभी भी केस चल रहा है मेरे पर। उन्हें कुछ ऑर्डर फिकवाया था, मुझे सीसीटीवी कैमरा में रखा और बहुत ज्यादा मेरे साथ तो वो हुआ, कैसे डिप्रेशन में आने का फिर से ऊपर उठना, जीरो से स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल था दो दो बार। फिर जब मैं सेकेंड टाइम जब मूव ऑन करी तो बस अब लगा कि बस अब सोशल वर्क करना है और इतने आगे बढ़ना है, क्योंकि जब मैं वापस मेरे पापा ने लेके आया समाज से बातचीत करके, तो उनको समाज से उस बंदे को निकाला, समाज से निकाल दिया गया, और जब समाज के सारे मेरे पक्ष में थे बैठक बैठक हुई, पापा जब लेके आए तो एक पिता की हालत बहुत बुरी रहती है उस वक्त, जब पापा लेके आए मुझे तो फिर लोगों ने अरे इसकी तो दूसरी शादी हो गई, ये तो ऐसी औरत होगी, जरूर इसी की गलती हो गई, मतलब मानसिकता नहीं कि औरत को इंसान इतना ज्यादा वो समझ लेता है कि अरे मैं मतलब समझ के बाहर है। इसलिए हमेशा बोलती हूँ अपमान मत कर नारियों का, अपमान मत कर नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। क्यों मतलब ये मानसिकता है कि पुरुष की गलती नहीं हो सकती, औरतों की ही गलती होती है। तो ठीक है कई टाइम होता है औरत की भी गलती रहती है, मैंने काफी सारे केस देखे हैं, औरत की भी गलती रहती है, मर्दों की भी गलती रहती है, बट जो भी हुआ ठीक है फिर मूव ऑन किया। फिर मैंने देखा सुशांत सिंह का एक केस आया था कि उसे सुसाइड कमिट किया था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो मैंने काफी काउंसलिंग की, जो विडो लेडी थी डिवोर्सी लेडी थी उनके साथ मिली, फिर मैंने उनको समझाया कि सुसाइड जो माइंड में आता है ना वो सिर्फ हम अपनी जिंदगी खत्म करते हैं, लेकिन नहीं वास्तव में हम अपनी जिंदगी नहीं, अपने से जुड़े लोगों की भी जिंदगी खत्म कर देते हैं, खत्म नहीं होते हैं उनके साथ साथ सब लोगों की जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो मैं मोटिवेट करना शुरू किया, फिर अभी तक सोचिए मैं तो खुद लोक अदालत में हूँ, लेकिन अभी तक अपने केस के लिए मैं ट्राई कर ही रही हूँ कि कुछ हो जाए।
ऐसी कहानी है आपकी कि स्ट्रगल भी किया आपने, इतना सारा दूसरों का भला सोशल वर्क कर रही हैं आप, लेकिन खुद अभी तक अपने खुद के जीवन से उबर नहीं पाई। आपका बेटा कितना बड़ा हो गया?
नहीं एक्चुअली मेरी बेटी है, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी है, वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, मम्मी पापा के साथ हूँ, साथ होना बहुत जरूरी है। मैं हर वो पेरेंट से कहना चाहूंगी जब बच्चे से एक गलती हो जाती है तो उसे छोड़िए मत, आप अपनाइए, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है और आप वो दुनिया है अपने बच्चों के लिए जो उसको दुनिया दिखाए हैं। तो प्लीज हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करती हूँ और हर समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करती, क्योंकि आप उस बच्चे को अपना आश्रय दीजिए, सहारा दीजिए, ताकि वो भी उभर पाए और कुछ बन पाए।
तो कितनी बड़ी हो गई है आपकी बच्ची?
मेरी 16 साल की हो गई है।
अच्छा अच्छा
11th में है और बहुत अच्छा पढ़ लिख रही है और भगवान चाह तो बहुत अच्छी पोस्ट में बहुत जाएगी, उसके नाना नानी बहुत सपोर्ट करते हैं उसको और मुझे तो काफी मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
तो आप भी बहुत खुशकिस्मत इस मामले में हैं कि आपको इतने अच्छे माँ बाप हैं कि वो एक आपकी शायद गलती थी जो आप लव मैरिज करके छोड़ करके गई थी अपने माता पिता को छोड़ करके, लेकिन हर माँ के लिए अपनी हर पिता के लिए अपनी बेटी सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो सपोर्ट आपको मिला तभी आप जिंदगी में घूम फिर पा रही, इतनी मजबूती के साथ लड़ रही हैं पहले अनुभवों के आधार पे और इतने सारे लोगों के लिए आप काम कर रही हैं। आपके हाथ में आपने जैसे बोला कि कुछ अवार्ड्स हैं और अभी और आने वाले हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आप इंटरनेशनल एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं आपने बीच में बोला था, तो वो क्या है?
चलिए जब कोविड पीरियड था, कोविड टाइम पे मैं खाली पीली मतलब बैक ही थी उस समय, ज्यादा सोशल वर्क नहीं था, तो मैंने दो तीन नाइजीरिया है और यूएसए है, यूरोप है, वहाँ मैंने बोला कि जहाँ इंडियंस हैं मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो ऐसे करके धीरे 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 मेरे कॉन्टेक्ट बढ़ते गए, मेरा नाम चलता गया और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट आई हैव 35 ऑनरी डॉक्टरेट, इंटरनेशनल डॉक्टरेट यूरोप एशिया। और ये फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे पास इतने सारे कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट होते गए, हर समाज के, हर क्लास के, एनजीओ के लोग मुझे देने लगे। ऐसे धीरे धीरे यूएन वॉलंटियर्स, यूएन में मुझे बोला गया कि मैम यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन अवर यूएन वॉलंटियर्स, आप एलिजिबल हो, आप ज्वाइन कर लो करके। तो फिर मैंने फॉर्म भरा तो तुरंत सिलेक्ट हो गया, मेरे पास रोस्टर नंबर आ गया, अब मैं यूएन वॉलंटियर भी हूँ। और हाँ जी बिल्कुल, और काफी सारे मतलब इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़ी हूँ, अभी वर्ल्ड पीस कमेटी से भी जुड़ी हूँ, नेशनल मंडेला अवार्ड मिल चुका है मेरे को वहाँ से, क्योंकि हाँ नाइजीरिया में हुआ था, हम जा नहीं पाए नेशनल मंडेला अवार्ड में, और हमें अब्दुल कलाम जी का गांधी पीस, नेपाल का जो गांधी पीस नोबल पीस अवार्ड है वो भी मिल चुका है। तो काफी सारे अवार्ड हैं जो कि मिल चुके हैं, लेकिन अवार्ड से ज्यादा अच्छा मुझे ये अवार्ड मिला कि अब मुझे समाज उस नजर से नहीं देखता जिस नजर को मैं फेस करके यहाँ
तक। सही बात है, जो फेहरिस्त बता रही है अवार्ड की, न केवल देश के, प्रदेश के, बल्कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है कि शायद कोई पुरस्कार बचे ही नहीं है आपकी लिस्ट सुन के, मुझे ऐसा लग रहा था।
नहीं, पुरस्कार बचा है मैडम, जिस दिन मेरी बेटी एक बहुत अच्छी इंसान बन जाएगी, किसी की जिंदगी बना दी, लोग चाहते कि उसकी बेटियां या उनके बच्चे एक बहुत अच्छे कामयाब डॉक्टर बने, सीए बने, ये कलेक्टर बने, मैं चाहती हूँ वो इतने अच्छी इंसान बने कि किसी एक बिखरी जिंदगी को सवार ले, तो उस दिन मुझे वो अवार्ड मिल जाएगा जो
मैं अलग और अनोखा सपना है कहना चाहिए आपका, आपकी बेटी जिस माहौल में रह रही है और जिस तरह से अपने माँ को, नाना नानी को उसने देखा है धीरे धीरे बढ़ते हुए और इन सारी स्ट्रगल्स को उसने महसूस किया है बचपन से, वो तो अच्छी इंसान बन चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।
तो नेहा जी, अब आप ये बताइए कि इतना सब करने के बाद आपका टारगेट एम क्या है, अब क्या करना चाहती हैं आप?
अब मैं मुझे एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, जिसके बारे में अभी मैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में से बात कर रही हूँ, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट चाह रही हूँ इंडियन से और फॉरेन कंट्रीज से। मेरा सपना है कि मैं एक कैसा घर बनाऊँ जिसमें वृद्ध लोग रहते हैं, जनरली आप वृद्धाश्रम अलग सुने होंगे, अनाथ आश्रम अलग सुने होंगे, लेकिन सखीवन स्टॉक सेंटर काफी सारे ऐसे खुल चुके, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि जहाँ वृद्ध लोग रहे और बच्चे रहे। क्योंकि क्या होता है, सबसे अच्छा देखिए आप साइकोलॉजी और ये है कि बच्चे लोगों को बुजुर्ग लोग से ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है और उन लोग को बहुत चाहते हैं, तो बच्चे को ना बहुत प्यार मिलेगा और बुजुर्गों को बच्चों का साथ मिलेगा, तो दोनों जब साथ रहेंगे ना तो वो एक अलग सा माहौल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। बच्चों को बुजुर्गों का साथ मिल जाए, बुजुर्गों को
बच्चों का साथ, बच्चों को उनके अनुभव का फायदा मिले और वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे इंसान बन जाए। नहीं वाकई ये सोच लोग अपने घरों में नहीं समझते हैं, तभी तो वृद्धाश्रम बन लेते हैं, और अगर ऐसी सोच हर घर में हो तो न वृद्धाश्रम हो न अनाथ आश्रम हो, आप तुम दोनों को जोड़ के चलाने का सपना देख रही हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जल्दी से आपका ये सपना पूरा हो।
और एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता, औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता।
बहुत अच्छा नेहा जी, आपकी इसी बात के साथ हम आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, भविष्य की आपके सारे सपने पूरे हैं ये हम उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम रेडियो में आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हर परिजन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। राजनगांव की लोक अदालत में स्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत डॉक्टर नेहा गुप्ता आज थी हर पार रेडियो की विशेष मेहमान, जिनकी उपलब्धियों और जिनके सपनों के बारे में हमने बातचीत की।